লাস্ট টাইম আমি দেখি পাই ফার্স্ট এড বাবা কে তো বাদ মে কল লিয়া তো শায়দ ইয়া হোনা থা তো আজ হম দেখেঙ্গে ফার্স্ট এড কে বারে মে জেসে নাম হ্যায় ফার্স্ট এড তো ইসকা মতলব এক সেকেন্ড এড ভি হ্যায় ফার্স্ট এড মতলব ও জো ব্যক্তি কর রহা হ্যায় জো ডক্টর নেই ये जो आज जो सुनाने वाले हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है जो डॉक्टर है जो डॉक्टर नहीं है वो लोग क्या करें तो हम बहुत सारी कंडीशंस देखेंगे जैसे स्ट्रोक हो जाता है तो क्या करना है हार्ट अटैक हो जाता है तो क्या करना है कोई चक्कर आके गिर जाता है तो क्या करना है किसी को कुत्ता अगर काटता है तो क्या करना है किसी को अगर सांप काटता है तो क्या करना है जल जाता है तो क्या करना है फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करना है मेन लक्ष्य है फर्स्ट एड का कि जब तक पेशेंट को चिकित्सक सहायता नहीं दी जाए तब तक क्या करना है हॉस्पिटल तक लेके जाने से पहले डॉक्टर के आने से पहले मेडिकल स्टाफ आने से पहले हमको क्या करना है उसके बारे में हम आज जानेंगे तो फर्स्ट एड की जो परिभाषा है इट इज द फर्स्ट असिस्टेंस और ट्रीटमेंट गिवन टू द कैजुअल्टी फॉर एनी इंजरी और सडन इलनेस एम्बुलेंस या क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट आने से पहले जैसे कि मैंने अभी बताया आपको तो ये है फर्स्ट एड एक होती है फर्स्ट एड किट तो ये आपने सुना होगा फर्स्ट एड किट के बारे में इसमें बहुत सारी चीजें होती है तो बेटाडीन सॉल्यूशन होता है स्पिरिट होगा उसमें गॉज पीसेस होंगे बैंडेज होगा सीजर होगा ऑइंटमेंट होगा कॉटन होगा मतलब किसी को कुछ करते करते चोट लग गई तो उस समय खून बंद करने के लिए हम ये भी इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में भी हम देखेंगे अगर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो क्या करना है तो इस तरह से और बहुत सारी तो ये एक फर्स्ट एड किट और दूसरी एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो फर्स्ट एड है सबसे पहले ये जो चालू किया एक सेंट जॉन नाम का एक व्यक्ति था उसने चालू किया 1888 में और भारत में एक सोसाइटी है रेड क्रॉस सोसाइटी तो फर्स्ट एड के बारे में जितना काम किया जाता है ये रेड क्रॉस सोसाइटी करती है ये रेड क्रॉस सोसाइटी की लगभग अभी तो 400 से भी अधिक ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है अभी हम चलेंगे फर्स्ट एड किट उसमें ट्रांसपोर्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हाँ जी सारे विश्व में तो है मैं भारत की बात कर रहा हूँ भारत में तो है मतलब फर्स्ट एड के बारे में एक दूसरी रेड क्रॉस इंटरनेशनल सोसाइटी होती है उसका कुछ दूसरा पर्पस है इंटरनेशनल इंटर रिलेशंस पीस क्रॉस वो सब करने के लिए पर ये जो रेड क्रॉस है ये कहीं भूकंप हो जाए कहीं आपदा आ जाए वहां क्या करना है उसके बारे में रेड क्रॉस सोसाइटी है ये फर्स्ट एड के बारे में फिर ट्रांसपोर्ट इसके बारे में डॉक्टर ज्योति आएंगे अभी थोड़ी देर में वो बताएंगे आपको कि कैसे ट्रांसपोर्ट मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया रास्ते पर तो उसको किस तरह से आप हॉस्पिटल पहुंचाएंगे आपके पास कोई साधन नहीं है कुछ नहीं है आप कैसे उसको पहुंचाएंगे क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है फर्स्ट एड का वो है थोड़ा सा कुछ करना जिससे पेशेंट थोड़ा सा स्टेबल हो जाए और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना ये हमारा लक्ष्य है तो अलग अलग मेथड्स है हॉस्पिटल में पहुंचाने की जैसे स्ट्रेचर अभी किसको स्ट्रेचर पे डालना है किसको व्हील चेयर पे रखना है ये हमको डिसाइड करना है कभी कभी कुछ भी नहीं होता है तो ये देखो इस कितने अच्छे तरीके से दो लोग ने मिलकर इस आदमी को उठा के लेके जा रहे हैं कभी ऐसे उठा के लेके जा रहे कभी पूरा चेयर के सहित उठा के लेके जा रहे आर्मी में इस तरह उठा के लेके जाते हैं ये एम्बुलेंस है तो ट्रांसपोर्ट एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है इसमें यहाँ दिखा रहे आर्मी के लोग जो है ये घायल है व्यक्ति छोटे व्यक्ति को इस तरह से उठा के कभी हम इस तरह से उठा सकते हैं कभी किसी को फ्रैक्चर है तो इस तरह से इसके बारे में डिटेल में डॉक्टर ज्योति आज बताएंगे आएंगे थोड़े देर में तो आज जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ जितना हो सके हम करेंगे एक तो हार्ट अटैक अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या करना है दूसरा अस्थमा का अटैक किसी को पड़ जाता है आपको पता है कि इस व्यक्ति को अस्थमा है और सडनली या पता है या ना पता भी हो फिर भी आपको कैसे पहचाने की अस्थमा का अटैक है कभी कभी क्या होता है कि हमारे गले में कुछ खाने की वस्तु अटक जाती है चोकिंग जिसको बोलते हैं तो वो चोकिंग अगर हो जाए तो क्या होता है एक बीमारी होती है मिर्गी की बीमारी अगर मिर्गी की बीमारी हो जाए सडनली किसी को हमारे सामने फीट्स आना चालू हो जाए तब क्या करना है हमको वो हम देखेंगे अगर किसी को हमारे सामने इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो क्या करना है वो हम देखेंगे फिर पॉइजनिंग चाहे फूड पॉइजनिंग हो या और कोई भी पॉइजनिंग हो कोई कुछ खा लेता है तो क्या करना है किसी को स्ट्रोक हो जाए लकवा हो जाए तो क्या करना है किसी का शुगर लो हो जाए तो क्या करना है किसी को अगर कुत्ता काटता है तो क्या करना है स्नेक बाइट में क्या करना है कोई डूब जाता है तो क्या करना है हीट इमरजेंसी जिसमें हीट स्ट्रोक बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तब क्या करना है हाइपोथर्मिया टेम्परेचर बॉडी का एकदम लो हो जाता है तब क्या करना है, एलर्जी हो जाए किसी चीज से, हम कहीं हॉस्पिटल में गए किसी डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन दे दिया, हम कमरे में आए और देखा कि पूरा एलर्जी हो गया, उसकी रिएक्शन हो गई, या हमने कुछ खा लिया उसकी रिएक्शन हो गई, या किसी ने हमको कोई इंसेक्ट ने काट लिया उसकी रिएक्शन हो गई, फिर हम देखेंगे बर्न्स एंड स्कार्स और ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो क्या करना है, फिर हम देखेंगे हेड इंजुरी में क्या करते हैं, सर पे अगर चोट लग जाती है और ब्रोकन बोन्स। तो आज के हमारे डिस्कशन के इतने टॉपिक है, इसमें हम पूरा डिटेल में तो नहीं जाएंगे एक एक कंडीशन के, जस्ट आपको आपके सामने ये चीज हो गई आपको क्या करना है, इतना हम देखने वाले हैं शॉर्ट में एकदम। ओके, तो इन सब टॉपिक्स को समझने से पहले इन सब सब टॉपिक्स में एक बेसिक जो चीज है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसके बारे में हमने पूरा क्लास लिया है यहाँ पर, वो पंपिंग करने वाला CPR कितने लोग थे मुझे पता नहीं इसमें से, पर वो जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि सब चीजों में एक बात है कि पेशेंट बेहोश है या होश में, ये जितनी कंडीशन है उसकी एक्सट्रीम ये है कि पेशेंट बेहोश है, जो रोगी है वो बेहोश है या बेहोश नहीं है, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। अगर बेहोश है तो क्या करना है, और अगर होश में है तो क्या करना है, यदि वो बेहोश में है, यदि वो बेहोशी में है तो वो सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, अगर वो बेहोश है और सांस नहीं ले रहा है तो क्या करना है, हमको तुरंत कैरोटिड हम देखते हैं, हमने बताया था ना लास्ट टाइम, यहाँ की पल्स देखना है, पल्स एब्सेंट चालू कर देना है कॉम्प्रेशन, ठीक है, कितने करेंगे 15:2 15 करेंगे, उसके बाद में 30:2 ओके 30 और 2 ऐसे 5 साइकिल कब तक करते रहेंगे, जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए तब तक। ओके, हम थोड़ा शॉर्ट में वापस देख लेंगे वही बात के बारे में, ये जो ट्रेनिंग है किस किस को जरूरी है, तो जो ये फायर फाइटर्स होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये ट्रेनिंग, क्योंकि उनको मरीजों को बचाना होता है, फिर जो लाइफ गार्ड जिनको बोलते हैं अगर कोई डूब जाता है तो उसको बाहर निकालना है, तो ये जो लोग है जो बचाने वाला है लाइफ गार्ड उसको ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है BLS का, फिर जो पुलिसमैन है उनको भी ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद में तो कार्डियक अरेस्ट यानी हृदय की गति रुकना, इसमें दिल का दौरा नहीं कार्डियक अरेस्ट है, बेहोश है थोड़ा सा वॉइस से अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस प्रोवाइड, इस बीच उसे कृत्रिम सांस यानी CPR दें, यदि आप इसके लिए पहले से प्रशिक्षित नहीं है तो ऐसा करें, मरीज की बगल में घुटनों पर बैठ जाए, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और अपनी हथेलियों को नीचे की तरफ रखते हुए ब्रेस्ट बोन यानी छाती की हड्डी के नीचे रखें, अपनी कोहनियों को सीधा रखें, अपने पूरे शरीर के वजन को अपने हाथों पर डालें ताकि सीधा दबाने में आसानी हो, अपने हाथों से जोर देते हुए
इस तरह नहीं करना है जैसे हमने बताया था लास्ट टाइम, ऐसे करना ये गलत कर रहे हैं,
हाथ हटाए बगैर ही प्रेशर कम करें, उसके बाद एक क्षण के लिए रुकें, दबाने और छोड़ने की प्रक्रिया को दोहराएं, ऐसा 30 बार करें, इसके बाद आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन या कृत्रिम सांस की प्रक्रिया आरंभ करें, सिर पीछे की तरफ करें, ठोड़ी या चिन को ऊपर उठाएं, नाक को अपनी दो उंगलियों से इस तरह दबाएं कि हवा लीक ना हो, लंबी सांस लें, अपने मुंह से मरीज के मुंह को पूरी तरह सील कर दें, मरीज के मुंह में 2-2 सेकेंड पर सांस छोड़ें, इसे दोहराएं, CPR दोबारा शुरू करें, मेडिकल सहायता न मिलने तक 30 बार चेस्ट या छाती दबाने और मुंह से मुंह में सांस लेने की इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है।
इतना जल्दी तो कोई उठेगा नहीं ये वीडियो है, तो इसमें क्या करना है वापस एक बार बताता हूँ, हमारे सामने यदि कोई गिर गया, हमने देखा कि वो बेहोश है, बेहोश वो कैसे हमने जाना, हमने उसको पूछा कि भाई ठीक हो, कोई आंसर नहीं, उसके बाद में हमने देखा छाती उसकी नहीं हिल रही, नीचे ऊपर नहीं हो रही, तो ये व्यक्ति वो है कि जो सांस नहीं ले रहा है और बेहोश है, फिर हमने क्या किया पल्स देख लिया कि है या नहीं और तुरंत CPR चालू कर दिया कॉम्प्रेशन 32 32 32, ये उस व्यक्ति में जो कि बेहोश है और सांस भी नहीं ले रहा है। कुछ कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति गिर जाता है और हम जब उससे पूछते हैं कि कैसे हो तो वो होश में होता है, तो उसको वो रिकवरी पोजीशन देनी है। तो ये तो एक शॉर्ट में था, तो क्या करना है, अनरिस्पॉन्सिव नो ब्रीदिंग पेशेंट है इमरजेंसी, उसके पहले एक और एक काम करना है कि हॉस्पिटल में फोन कर देना, क्योंकि हमने चालू तो कर दिया पर उसके पहले फोन कर देना है कि भाई गाड़ी लेके आ जाओ, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स, और उसके बाद में CPR चालू। अगर आपके पास वो AED मशीन अवेलेबल है जिससे शॉक देते हैं तो वो शॉक है। अभी हम आगे चलेंगे। सबसे पहला जो हमारी कंडीशन है हार्ट अटैक। कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने किसी को हार्ट अटैक अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है? देखा है, वेरी गुड। क्या होता है इसमें? तो ये जो मरीज होगा हार्ट अटैक का, इधर वो पहले से उसको डायबिटीज होगा या बीपी की बीमारी होगी या इस तरह की, या अल्कोहलिक होगा या बीड़ी स्मोकिंग सिगरेट कुछ ना कुछ वो लेते वाला, कभी जरूरी नहीं कि ये सब होगा, बट इधर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर बहुत मोटा होगा। ये सब फैक्टर्स है कि जिनकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। पर हार्ट अटैक का जो प्रेजेंटेशन है, कैसे पहचाने कि ये हार्ट अटैक ही है? क्योंकि हार्ट छाती में जो दर्द होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर छाती में जो दर्द होता है वो हार्ट अटैक ही है। तो इसके कुछ प्रमुख लक्षण, जैसे कि सबसे पहले ये जो दर्द है लेफ्ट साइड में होता है या छाती के बीच में होता है, और अगर आप पेशेंट को पूछेंगे तो कहेगा ये ऐसा दर्द है कि आज तक ये दर्द मुझे कभी नहीं हुआ, इतना सीवियर इंटेंसिटी होती है, बहुत सीवियर, जो आज तक उसको कभी नहीं हुआ इतना दर्द। दूसरा, उस टाइम पे उसको पसीना आ जाता है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। हमारे पास में अभी जैसे उदाहरण बता दो, मुरली में हम बैठे और बाजू वाला व्यक्ति अचानक पसीना आने लग गया उसको, और जरूरी नहीं कि हर एक को चेस्ट पेन होगा ही। कभी कभी डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको कोई चेस्ट पेन नहीं होता है पर हार्ट अटैक आ जाता है। उनको जो कंप्लेंट्स होती है वो चक्कर आना, अचानक चक्कर आने लगती है, अचानक घुटन सी होती है, किसी किसी को यहाँ पर दर्द होता है गले में, ये भी गले का यहाँ का जो दर्द है एकदम सीवियर कि जैसे ऐसे पकड़ लेता है, क्या हो रहा है उसको समझ में नहीं आता, वो डिस्क्राइब ही नहीं कर, वर्णन नहीं कर पाता, वो भी हार्ट अटैक हो सकता है। वो वर्णन ही नहीं कर पाता क्या हो रहा है उसको, वो कहता है घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। एंग्जाइटी, एकदम कभी कभी सांस लेने में तकलीफ, ऐसे चालू कर देगा कुछ, वो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक के जो फीचर्स हैं, कभी कभी किसी को उल्टी जैसा होगा, नौशिया उल्टी हो जाएगी, ये भी हार्ट अटैक हो सकता है। जैसे कि हमारे पास में मैंने बताया था, बीच में एक पेशेंट था, मतलब इधर से ही कुछ घूमने आए थे गुजरात से कुछ लोग, तो उनमें से वो सारे मतलब ड्रिंकर्स थे, रात भर पीते रहे और उसको छाती में दर्द होते रहा, पर उसको लगा कि ये जो दर्द है एसिडिटी का दर्द है, तो आया नहीं। जो दर्द चालू हुआ रात को 10 बजे, वो सुबह 6 बजे हॉस्पिटल आया, हमने ECG लिया तो देखा कि हार्ट अटैक, उसके बाद में उसका सब ट्रीटमेंट चालू किया। तो हार्ट अटैक का जो दर्द है, कभी कभी पेट का दर्द भी होता है, यहाँ बीच में ऊपर एसिडिटी, जहां आपको लगता है एसिडिटी हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, डकार सी आ रही है, ये जो दर्द है अगर ये सीवियर इंटेंसिटी का है और जो रिलीव नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, वो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो हार्ट अटैक के अनेक अनेक फीचर है, और जैसे मैंने कहा कोई कोई लोग होते हैं ना डायबिटिक पेशेंट्स, उनके डायबिटिक की वजह से जो जिस वजह से पेन होता है वो नसें डेड हो जाती है, तो पेन होता ही नहीं। आपने सुना होगा कोई व्यक्ति सो रहा है और सुबह उठा ही रातों रात हार्ट अटैक आ गया, समझ में आया? तो हार्ट अटैक के ये सारे सिम्टम्स है, हम अभी एक वीडियो देखेंगे, यहाँ पे बताया है हार्ट अटैक कैसे होता है। ये हमारा हार्ट है, हमारी जितनी मुट्ठी है उतनी उसकी साइज होती है, लेफ्ट साइड में होता है, इसका वजन होता है 500 ग्राम, ठीक है। ये उसकी नसें है, हार्ट की धमनियां है जिससे रक्त प्रवाहित होता है, और अभी ये जो एक आर्टरी है इसमें ये खून बह रहा है, और कभी कभी कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल ऐसा जमा हो जाता है, और ये जब जमा होता है तो खून की जो दीवार है, ये जो है आर्टरीज, इसकी दीवारों में वो जमा होने लगता है, और जब 100% ब्लॉक हो जाता है तब हार्ट अटैक होता है। 10% 20% 30% कुछ नहीं होता है, 70% चेस्ट पेन होगा पर अंजाइना हो सकता है, वो हार्ट अटैक नहीं। हार्ट अटैक मतलब जब संपूर्ण, जैसे यहाँ डेड हो गई, ये हिस्सा काला हो गया, तो ये जो है ना इतना हिस्सा डेड हो गया, और जब ऐसा होता है तो इतना सीवियर पेन होता है कि पेशेंट कांट टॉलरेट, सहन नहीं कर पा सकता, इतना सीवियर पेन होता है उसको। तो ये है हार्ट अटैक। अभी हमारे सामने सामने ऐसा हुआ किसी को, जैसे यहाँ दिखाया है, तो हमें क्या करना है?
हार्ट अटैक इज द कंप्लेंट ब्लॉकेज ऑफ अ कोरोनरी
आर्टरी व्हिच डिप्राइज, इस तरह का दर्द होगा बीच में कभी कभी, स्क्वीजिंग पेन,
ऑक्सीजन सप्लाई, द ऑनसेट ऑफ पेन इज यूजुअली सडन और पेनफुल। However, the pain is not relieved by rest. When you don't stop, central chest pain or discomfort, which lasts for more than 10
minutes, is irritable.
The pain may radiate into
या जब तक उसका ट्रीटमेंट ना करें तब तक पेन होता रहे, ठंडा हो जाएगा, हाथ पैर एकदम नम हो जाएंगे, उल्टी जैसा लगेगा, उल्टी का भी देगा। सबको आएगा ऐसा जरूरी नहीं है किसी को पसीना आएगा, किसी को उल्टी होगी, किसी को चेस्ट पेन ये बाजू में होगा, कभी कभी रेयरली ऐसा भी होता है कि चेस्ट पेन राइट साइड में भी हमने देखा है, बहुत रेयरली, पर यूजुअली जो पेन होगा सेंट्रल होगा या फिर लेफ्ट साइड में होगा, उल्टी जैसा लगेगा, जैसे मैंने बताया बहुत सारे पेशेंट को होता है ऐसा। किसी को पेट में दर्द होगा वो भी हार्ट अटैक हो सकता है, किसी को गले में दर्द होता है वो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो अभी हमको क्या करना है, एक तो हमारे सामने कोई है उसको ये सब हो गया, सबसे पहले हमको ये करना है कि हम कहाँ हैं, अगर कोई बंद कमरे में है तो खिड़कियां खोल देनी है, दूसरा फैन अगर है तो फैन चालू कर देना, उसके जो कपड़े जो टाइट है वो थोड़े से लूज कर देना। सबसे पहले डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बहुत ज्यादा हाइपर नहीं हो जाना, एंग्जियस नहीं हो जाना, क्या हुआ क्या हुआ, आप इतने डर गए वो ज्यादा डर जाएगा हमसे, हमको देखकर अरे ये हार्ट अटैक तो नहीं, हम उसके सामने जोर जोर से ऐसे बोलने लगे तो उसका और ज्यादा वो डरना लगे। सबसे पहले शांत रहना, घबराना नहीं है, सांत्वना में देनी है पेशेंट को, धीरज, जैसे कि उसको मतलब ना सब ठीक हो जाएगा, और दूसरा उसको लिटा देना है, अगर कोई बेड है वहां पर उसको उसमें उसको सुला देना, फैन चालू कर देना है, उसके कपड़े थोड़े लूज कर देने हैं, और उसको ज्यादा हिलना, ज्यादा हिलाना नहीं है, उसको इधर से बिठाया उधर बिठाया, वहां से बिठाया इधर बिठाया, वहां से उठ यहाँ बिठाया, ये सब नहीं करना, एक ही जगह उसको, अगर जमीन पे हो रहा है तो जमीन पे उसको लिटा दो, ज्यादा उसके साथ ये कुछ नहीं करो, और उसको बोला सब ठीक हो जाएगा, और उस सब उतने तक हॉस्पिटल फोन कर दो, पर आपको ये डायग्नोस करते आ जाना चाहिए कि ये हार्ट अटैक, एटलीस्ट सोचना चाहिए कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, नहीं तो हम ये सोचेंगे अरे ये कुछ नहीं है तो एसिडिटी है, आज बहुत तेल वाला खाया था मसाले वाला खाया था उसकी वजह से तुमको ऐसे हो रहा है, ऐसे नहीं, सस्पिशन, स्ट्रॉन्ग इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, ये हो सकता है, भले वो ना भी निकले तो बहुत अच्छी बात है, ना निकले तो बहुत अच्छी बात है, पर हमको सोचना कि हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उसने अचानक अभी तक ठीक था और अचानक ये सब होने लगा, और हमको पता है इसको डायबिटीज है, हमको पता है इसको बीपी है, हमको पता है इसको हार्ट की प्रॉब्लम पहले भी कभी हुई थी, थोड़ी सी हिस्ट्री हमको उसके बारे में पता है, तो यदि हमको पता भी नहीं तो हम उसको पूछ सकते हैं तुम्हारी क्या दवाइयां चालू है, तो वो खुद ही बताएगा, क्योंकि बेहोश नहीं होता इसमें बहुत बार पेशेंट, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में बेहोश हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, बात करते रहेगा और बताएगा कि मुझे दर्द हो रहा है, वो बोल नहीं पाएगा पर थोड़ा तो बताएगा कि मुझे दर्द हो रहा है। तो हमारा काम हार्ट अटैक में इतना ही है कि उसको डायग्नोस करना, उसको लिटा देना, जैसे मैंने कहा ये दो तीन चीजें करनी, हॉस्पिटल फोन करना और फटाफट एम्बुलेंस अरेंज करके जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटल में पहुंचाना। अगर पेशेंट हार्ट अटैक के आधे घंटे में एक घंटे में हॉस्पिटल अगर पहुंच जाता है और हम जो एक ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे वो ब्लॉक आ गया था वहां पे, हम एक इंजेक्शन देते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेस या टेनिंटिप्लेस एक घंटे में या 5 सेकंड में, वो इंजेक्शन ऐसा है कि वो जो क्लॉट आ जाता है ब्लॉक उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, वो इंजेक्शन जितना जल्दी अगर मिल जाए पेशेंट को उतना अच्छा है, क्योंकि वो क्लॉट जो आ गया हम इंजेक्शन दे देंगे तुरंत और वो क्लॉट खुल जाता है, वापस जो खून रुक गया था फ्लो चालू हो जाता है, तो जो एरिया है हार्ट का जो कि डेड होने वाला था वो डेड नहीं होगा, इसके लिए कहते हैं टाइम इज मसल, जितना जल्दी वो आएगा उतना अच्छा। और ऐसा पेशेंट जो बहुत जल्दी आ गया और जिसको बहुत जल्दी ट्रीटमेंट मिल गई, वो मरीज अगर एंजियोग्राफी के लिए भी जाता है तो उसका एंजियोग्राफी भी नॉर्मल आता है, क्योंकि जिस वजह से क्लॉट आया था ब्लॉक हुआ था वो खुल गया ऑलरेडी। एक एंजियोप्लास्टी का जो खर्चा है कितना है पता है? एक स्टेंट 1.5 लाख 1.65। इतने लास्ट मंथ में हमारे पास दो पेशेंट आए थे आबू के, पहला जो है वो 36 वीक्स उसकी एज थी, वो आधे घंटे के अंदर आ गया, उसको हमने फटाफट ट्रीट कर दिया, एक हफ्ते के बाद में अहमदाबाद भेजा, एंजियोग्राफी की, एंजियोग्राफी नॉर्मल। दूसरा एक मरीज था, उसके रिलेटिव्स को लगा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, 2-3 घंटे तक घर पे मैनेज किया, कुछ कुछ देते गए, कभी कुछ पिला दिया, नींबू पानी पिलाया, ये पिलाया, वो पिलाया और बाद में लेके आए तो देखा हार्ट अटैक है उसका। फिर हमने ट्रीटमेंट किया, उसके बाद में उस अहमदाबाद जब भेजा तो उसको ऑलमोस्ट 99% ब्लॉक आया एक आर्टरी में, फिर उसको एंजियोप्लास्टी करा। तो ये था हार्ट अटैक के बारे में। आगे हम चलेंगे थोड़ा, उसके बाद में अस्थमा। अब ये अस्थमा के जो लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनके पास हमेशा वो पंप रहता है हमेशा। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें एपिसोडिक अटैक्स आते हैं, किसी ना किसी चीज की व्यक्ति को एलर्जी होती है, चाहे जैसे मौसम बदलेगा उसको अटैक आना चालू होगा। और अटैक आने का समय जो है वो मोस्टली मॉर्निंग में होता है, किसी भी वक्त आ सकता है पर मॉर्निंग में ज्यादा होता है ये। तो ये अटैक जब आता है तो अचानक मरीज ब्रेथलेस हो जाता है, सांस लेने में उसको तकलीफ चालू हो जाती है, कभी कभी बहुत ज्यादा हो तो सीटी बजनी चालू हो जाती है, और बहुत एक्सट्रीम जो होता है उसमें मरीज कुछ भी नहीं बोलता, रुक जाता है, उसको ताकत ही नहीं रहती कुछ बोलने की। दैट इज नोन एज स्टेटस सिस्टमैटिकस, एक्सट्रीम कंडीशन जो है जिसमें डायरेक्ट आईसीयू में एडमिशन लगता है। अदरवाइज इस तरह से जोर जोर से सांस लेना चालू करते हैं और आवाज आती है, वीज जिसको बोलते हैं, सीटी बजती है छाती से। अभी हम पहले वीडियो देख लेंगे क्या होता है अस्थमा में। ये हमारे नॉर्मल, हमारी जो श्वास नलिका है वो ये है नॉर्मल, इतना उसकी मतलब एयर यहाँ से बहती है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से ऊपर से नाक से हम जो सांस लेते हैं इधर आती है, इधर से हमारे दोनों फेफड़ों में जाती है। अभी ये नॉर्मल है। अस्थमा में क्या हो जाता है, ये जो इसकी जो ये है इसको डायमीटर, ये कम हो जाता है, ये एक्सट्रीम, ये अटैक में इतना कम हो जाता है कि इतना कम होने की वजह से सांस ले नहीं पाता व्यक्ति, इसके लिए हवा फिर ये फेफड़ों में नहीं पहुँचती। ये देखो ये दोनों नॉर्मल है, यहाँ ये लाल लाल दिख रहा है, ये एरिया में हवा नहीं पहुँच रही। तो दिस इज नोन एज अस्थमेटिक अटैक। इसमें हम देखेंगे ये पंप होते हैं, यूजुअली अस्थमा पेशेंट के पास ये पंप होते हैं। यदि हमको पता है कि अस्थमा का पेशेंट है तो हम उसको और अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। निकाल पाएगा, हमको खुद निकालना पड़ेगा उसकी बैग से, बैग निकालना है, वो खुद ही ऐसे चार बार उसको, तीन या चार बार उसको पंप देना है, वो खुद ही लेगा। ठीक हो गया, ये था माइल्ड अटैक, ये था माइल्ड अटैक। क्या करना है इसमें, सबसे पहले उनकी हमको थोड़ी मदद करनी है, रीअश्योर करना है। सबसे पहले तो डरना नहीं है, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इसमें उसको शांति से बिठाना है और इसमें लिटाना नहीं है पेशेंट को। हार्ट अटैक में हम सुला देते हैं, इसमें सीधा बिठाना है चेयर पर, अगर चेयर है तो चेयर पर बिठाओ, इसमें लिटाएंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें हमको उसको सीधा बिठा देना है चेयर पर और उसको ढूंढना है कि भाई है क्या कुछ उसके पास, पंप वगैरह। अगर कुछ भी नहीं है तो खाली बिठा रहे हैं और तुरंत हॉस्पिटल फोन करना है या उसको ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट करना है, उसके ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में भी पेशेंट बैठा बैठा ही लेके जाए, एम्बुलेंस के अंदर भी उसको लिटाना नहीं है, उसमें एम्बुलेंस में फैसिलिटी होती है, वो सीट को आप सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था अस्थमेटिक अटैक। इसमें मैक्सिमम मतलब बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाते हैं ये पंप लेने से, पर कभी कभी जो ज़्यादा सीवियर होते हैं उनको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सीवियरिटी का कॉज होता है कोई इन्फेक्शन हो जाता है बीच में, जो अभी तक ठीक चल रहा था, कोई निमोनिया हो गया, खांसी चल रही थी और ठीक नहीं हुई और अभी एकदम से अटैक ज्यादा हो गया। और ये जो मरीज होते हैं इनको किसी ना किसी चीज से एलर्जी होती है, चाहे किसी को खाने से एलर्जी होती है, इसमें एक एलर्जी टेस्ट होती है, तो वो भी अगर कर ले और वो चीज़ें जिससे जिससे एलर्जी है उसको अवॉइड करें तो बहुत अच्छा। तो ये था अस्थमा अटैक, ठीक है। इसको रिकॉग्नाइज करना है कि इसमें मरीज, इसको जरूरी नहीं है कि बीपी शुगर कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। यंग पेशेंट होगा, कभी चाइल्डहुड अस्थमा भी होता है, अचानक से ब्रेथलेस होना और सीटी बजना चालू हो जाएगी, वो बोल नहीं पाएगा कुछ। हमको रिकॉग्नाइज करना है, डायग्नोस करना है कि अस्थमा हो सकता है, उसके जेब में ढूंढना है। कभी कभी कुछ लोग कार्ड भी रखते हैं अपनी जेब में कि आई एम अ पेशेंट ऑफ अस्थमा, तो वो पढ़ के हम और ज्यादा पता कर सकते हैं कि अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट होता है चोकिंग। जोकिंग मतलब खाना खा रहे हैं, खाते खाते अचानक यहाँ कुछ अटक गया। ये यूजुअली जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें ज्यादा होता है, यहाँ हड्डी अटक जाती है खाते खाते यहाँ पर हड्डी अटक जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, कोई बता सकता है सर? क्योंकि ये जब होता है अगर इसको हमने ट्रीट नहीं किया तो डेथ हो सकती है, अगर इसको ठीक नहीं ट्रीट नहीं किया। क्योंकि डायरेक्टली एयरवे ना, एयरवे तो मेन है, ए बी सी, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, सबसे पहले एयरवे, जहाँ सांस ही रुक गया तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, कुछ समय रहेगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर कुछ दिख रहा है मुंह में विजिबल उसको निकाल देना है, ऊपर से हमको कुछ दिख रहा है तो, नहीं दिख रहा है तो हम आगे देखेंगे भी क्या करना है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल साइन, ऐसे करेगा मरीज, बता नहीं पाएगा पर ऐसे करेगा, हर मरीज ऐसे करता है यूजुअली। उसको खांसी करने को बोलना है, क्या कहेंगे, खांसी करो तो शायद वो निकल जाए, सबसे फर्स्ट स्टेप वो है। क्या क्या हो सकता है मरीज को, एक तो सांस लेने में तकलीफ होगी, बात नहीं कर पाएगा, और ज्यादा समय अगर रहा तो बेहोश हो जाएगा। अगर इसको ठीक नहीं किया गया, यहाँ पर कुछ अटका हुआ है, आपने ठीक नहीं किया, उसको खांसी करने बोलना है, इस तरह से खुद ही खांसी करें। सबसे पहले तो उसको शांत करना है, सांत्वना देनी है, डराना नहीं है उसको, अभी क्या करेंगे, उसके पीछे खड़े रहना है, उसको थोड़ा सा नीचे झुकने के लिए बोलना है, और एक इस तरह से ब्लो मारना है पीछे से, ठीक है, पांच बार, कितनी बार, पांच बार, एक दो तीन चार पांच, ताकि अगर कुछ है हड्डी है कुछ है तो निकल जाएगा और वो फिर उसको तुरंत आराम मिलेगा। अगर उससे भी नहीं हुआ तो और दूसरी एक चीज करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, कोई भी आ जाए, सुरेंद्र भाई इधर आ जाइए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जिसमें वो बेहोश हो जाता है फिर अपन वापस पंपिंग चालू, हर चीज में लास्ट में अगर बेहोश हो जाता है तो पंपिंग चालू करते हैं। अभी क्या करना है इसमें, अब इन्होंने हो गया, हाँ, अब खाते खाते अचानक यहाँ कुछ अटक गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको नीचे होने के लिए बोलेंगे और खांसी करने बोलेंगे, खांसी करो अगर खांसी से नहीं हुआ अभी, ठीक है, तो मैं नीचे करूंगा और इनको पांच बार, दो तीन चार पांच, इस तरह से करूंगा। अभी इसके बाद में भी बोलता है कुछ ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद में अभी क्या करना है, ये हाथ को ऐसे बांधना है, ठीक है, हाथ को ऐसे बांध के पीछे से इधर बांधा, पेट के नीचे रखना है, उसको नीचे थोड़ा झुकना, नीचे झुकना, एक दो तीन चार पांच, इस तरह से, इसको कहते हैं हेमलिच मनोबल, तो यहां दिखा है ना, ओके, ये सबसे पहले तो उसको लीन फॉरवर्ड करेंगे, खांसी करने के लिए कहेंगे, उसके बाद में दोनों तरफ से हाथ डालेंगे और उसको सामने इस तरह से झटके देंगे, कितनी बार, पांच बार, वो नहीं हुआ वापस एक बार पीछे से पांच बार, ये एक दो तीन बार करेंगे, अगर नहीं हुआ तो उसके बाद में फिर एम्बुलेंस को, यूजुअली हो जाता है, हो जाएगा अगर कोई भी नहीं है अगर कोई भी नहीं है हमारे पास, हम अकेले हैं और अटक गए यहाँ पे, तो क्या करेंगे? हम खुद ही, कोई नहीं है मदद करने वाला, तो क्या करेंगे? खुद ही कुर्सी के ऐसे हो जाएंगे, कुर्सी के पकड़ के नीचे, ठीक है। अगर बच्चे को हुआ तो ये इस तरह का करते, अगर छोटे बच्चे को हुआ तो बच्चे को पकड़ के उल्टा ये करना है, और जैसे बड़ों को किया हमने तो इनको तो थोड़ा धीरे धीरे, ज्यादा जोर से नहीं नहीं तो फ्रैक्चर हो जाएगा, धीरे 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 करना है, ठीक है। तो ये जब भी चोकिंग होता है तो इस तरह से करते हैं, और ये सब करने के बाद अगर ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं ठीक होता है या बेहोश हो जाता है और ये है, तो फिर हमको तो चालू कर देना है CPR, फिर एम्बुलेंस बुलानी है, फटाफट अरेंज करना है और फटाफट इसको पहुंचाना, ये काम करना है। तो ये है चोकिंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो है सीजर्स। सीजर्स पता है, सीजर्स मतलब मिर्गी, मिर्गी का अटैक आता है किसी को हमारे सामने, क्या करना है? तो एठन जिसको बोलते हैं, कन्वर्जेंस, जो इस तरह से होता है, बेहोश हो जाता है तब तक, मतलब उसको पता नहीं रहता है, पूरा हिलता है, कभी कभी एक ही हाथ हिलता है बस, ऐसे 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 ऐसे, कभी कभी पूरा हिलता है और ऐसे ऐसे, उससे मुंह से झाग निकलता है, आंख ऊपर करती है, आई रोलिंग हो जाती है, मुंह से झाग निकलना चालू होता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है, और क्या कर रहा है, कहीं पर भी गिरता है, अगर वो पहाड़ी पर है और वहां उसको हो गया तो उसको हेड इंजरी हो सकती है, अगर वो स्विमिंग कर रहा है उस समय उसको हो गया तो डूब सकता है, अगर वो ड्राइविंग कर रहा है उस समय उसको हो गया तो वो एक्सीडेंट हो सकता है। इसके लिए जितने भी एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं, मिर्गी के, उनको उनके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि वो इस तरह में कोई भी काम ना करें, जॉब है उनको हम चेंज करने के लिए बोलते हैं, अगर वो स्विमिंग है स्विमिंग नहीं करना है उनको, पहाड़ी पर अकेले नहीं घूमना है, इस तरह से। पर अगर हमारे सामने किसी को हो जाए तो क्या करेंगे, एक वीडियो देखेंगे। अचानक बात करते करते रुक जाएगा, अभी अटैक आने वाला है उसको, कहीं पर भी हो गिरना चालू हो जाएगा और इस तरह से झटके उसको आने चालू हो जाएंगे, बेहोश रहता है इस समय, उसको कुछ नहीं पता। तो हमको क्या करना है, आजू बाजू में उसको जो भी अगर कुछ पत्थर है कुछ है उसको दूर करना है, दूसरा हमको उसके हेड को सपोर्ट देना है, तकिया है तो तकिया देनी है, नहीं तो कुछ और, उसको रोकने की कोशिश नहीं करो, पकड़ के बांधने की कोशिश नहीं करो, होने दो जो हो रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप, ये अटैक होता है 5 मिनट 10 मिनट में, आधे 15 मिनट में अपने आप सेटल होता है, हमको केवल इस समय इतना देखना है कि उसको और कोई चोट ना लगे, फिर उसको रिकवरी पोजीशन देनी है। मैंने जैसे बताया था रिकवरी पोजीशन, इसको कहते हैं रिकवरी पोजीशन, फिट आने के बाद, फिट आने तक आप वहां कुछ भी नहीं कर सकते, वो जब तक हो रहा है होने दो, केवल आजू बाजू उसको कोई चोट ना लगे ये देखना है। टिल्ट द हेड बैक, जिसको कहा जाता है रिकवरी पोजीशन, और तब तक फिर अपने आप ही होश में आ जाएगा। पर जब होश में भी आता है ना, अगले 6-7 घंटे तक, अगले 6-7 घंटे कंफ्यूज रहता है, उसको पता नहीं रहता मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, याद नहीं रहता है क्या हुआ कैसे हुआ मैं कहाँ था, उसको पोस्ट इक्टल स्टेट बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको एक ही करना है, उनको सेफ रखना है, इंजुरी नहीं होने देनी है, उसको रिस्ट्रेन नहीं करना है, नहीं तो हमको देखेंगे, हम देखेंगे ये क्या हो रहा है, उसके पैर पकड़ने की कोशिश करेंगे दो लोग, और दो लोग हाथ ये नहीं करना है, हमको लगा हम बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये नहीं करना है, आजू बाजू में जो भी खतरनाक वस्तु है उसको वहां से हटाना है। तो ये है उसका ट्रीटमेंट। अभी टंग बाइट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या होता है टंग बाइट होती है। हाँ जी, हाँ अगर इस सबसे पहले तो क्या है, एक लकड़ी अगर मिल जाए गार्डन में है तो एक लकड़ी रख दो, क्योंकि इसमें क्या होता है पेशेंट बेहोश होता है, इसकी वजह से उसकी दांत ऐसे हो जाते हैं, उसमें बीच में हमारी जबान कट जाने की चांसेस होते हैं, अगर जबान कट गई तो उसमें इतना ज्यादा ब्लड सप्लाई है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकता है वहां से। तो क्या करना है, एक तो लकड़ी रख सकते हैं, या फिर चम्मच है, चम्मच को कपड़ा ऊपर से लगा के इधर डाल दो ताकि ये ऐसा रहा, जिसको हम एयर वे बोलते हैं, ऊपर उसकी टंग बाइट नहीं होनी चाहिए, उसकी जबान कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब तक होना है वो अटैक तो आएगा ही, वो अटैक को आप रोक नहीं सकते आने के बाद, केवल इतना है कि वो अटैक जब आता है तो उसको आपको सेव करना है, दूसरा हेड इंजरी होने के चांसेस होते हैं उसमें। तो कुछ भी नहीं है तो अपना ही शर्ट निकाल के फोल्ड करके उसको हेड सपोर्ट देना है। तो सीजर में हमको ये काम करना है, और जैसे टंग बाइट का आपने बताया तो टंग बाइट नहीं होने देना है, फिर मुंह से झाग निकल रहा है उसको पहुंचना है, फिर तब तक एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना है, और उसको पहुंचाना है। बहुत बार ऐसा होगा कि हमको पता है कि ये पेशेंट मेरी का बीमारी है इसको, पर कभी ऐसा भी हो सकता है हमको कुछ भी पता नहीं, हम ऐसे घूम रहे कहीं और अचानक हमारे सामने किसी को ये हो गया। और दूसरी बात इसमें ये करना है, उसके कपड़े जो है वो थोड़े लूज करने हैं, शूज पहने हैं वो निकालने हैं, सॉक्स निकालने हैं, हो जाने के बाद तब कुछ नहीं करना है। तब तो खाली हमको उसको देखना है कि इसको ये जब तक अटैक चालू है तब तक चलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, पर आजू बाजू सब सेफ हो। एक बार वो हो गया उसके बाद में जूते निकालना, सॉक्स निकालना, उसके कपड़े थोड़े टाइट करना, ऐसी चीजों में यूजुअली अगर ये भीड़ में हो गया तो 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने क्या करना है, उसको हवा मिलनी चाहिए मरीज को, तो भीड़ को थोड़ा दूर करना ताकि उसको हवा मिले, ऑक्सीजन उसका ऑक्सीजनेशन अच्छे से हो, ठीक है। तो ये करना है हमको मिर्गी के टाइम। आगे चलते हैं, यहाँ पे वही दिया हुआ है, उसको कुशन देना है, कुशन द पर्सन लेट ले ऑन द ग्राउंड, लूज द लूजन टाइट क्लोथिंग, जो टाइट क्लोथ्स है उसको ये करना है। उसके बाद में रिकवरी पोजिशन, जैसे मैंने बताया क्या करना है, एक पैर ऊपर करना है, पैर ऊपर करने के बाद में उसको एक तरफ लिटा देना है पूरा ऐसे, इसको कहा जाता है रिकवरी पोजिशन। क्यों, क्योंकि इसमें एस्पिरेशन के चांसेस होते हैं, जो मुंह से झाग आया वो छाती में जा सकता है और फिर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है उसकी वजह से, इसके लिए उसको इस तरह से हमको रिकवरी पोजिशन देना है। जैसे यहाँ रिकवरी पोजिशन दिया है उसको, ये फोन कर रही है आ जाओ एम्बुलेंस, ठीक है। क्योंकि इसके बाद आप जो भी करना है डॉक्टर्स करेंगे, क्योंकि इसमें फिर जैसे इस तरह का मरीज आता है फिर हम उसको एक लोडिंग डोज देते हैं इंजेक्शन का, और फिर पेशेंट एक दो घंटे के बाद होश में आता है। एक दो घंटे के होश में आने के बाद में भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, क्या है उसको बात नहीं करता है, कुछ समझ में नहीं आता है, फिर दूसरे दिन पूरा होश में आ जाता है, पोस्ट इक्टल स्टेट जिसको कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी कंडीशन है जिसको कहा जाता है स्टेटस एपिलेप्टिकस, जिसमें ये सीजर्स रुकते ही नहीं परसिस्टेंट चलते हैं, और जितना समय तक ये झटके आते रहेंगे तब तक ब्रेन डैमेज थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म रूप से होते रहता है। इसके लिए हमारा लक्ष्य है कि जल्दी से जल्दी इसको आप खुद नहीं मैनेज करते, हॉस्पिटल में पहुंचाना ही है, उसको इंजेक्शन देने ही पड़ेंगे तब जाके वो शांत होगा। और जब ये रुकते नहीं तो कभी कभी बहुत सारे इंजेक्शन देने के बाद में अल्टीमेटली वेंटिलेटर पे डाल के कुछ इंजेक्शन चालू कर देते हैं, लास्ट उसको कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। स्टेटस शब्द मतलब इमरजेंसी के लिए बहुत एक्सट्रीम, जैसे स्टेटस अस्थमेटिकस है वैसे स्टेटस एपिलेप्टिकस इसको कहते हैं। तो ये था एपिलेप्सी इसके बारे में। फिर उसके बाद में फेंटिंग, फेंटिंग माना चक्कर, जैसे स्कूल में अक्सर करके होता है, सुबह सुबह वहाँ पे उनका सेशन होता है, पीटी चलती है, कुछ खड़े रहते हैं, राष्ट्रगीत चलता है, धूप में चलता है, ऐसे खड़े हैं और अचानक कोई गिर गया। बहुत बार आपने देखा होगा पसीना आया और अचानक गिर गया। हमको भी ऐसा होता है कि हमने नाश्ता नहीं किया, कुछ नहीं किया, काम करे जा रहे सेवा करे जा रहे, और दोपहर में ऐसा हुआ कि हम कहीं खड़े हैं और अचानक से चक्कर आ गया, हमने कोई दीवार है तो उसको हमने पकड़ लिया, पर अगर कुछ भी नहीं ज्यादा है तो एकदम गिर जाएंगे नीचे, उसको कहते हैं फेंटिंग अटैक। इसमें क्या करना है, उसको चक्कर आ रही है, क्या किया, जहां वो है वहीं पर उसको लेटा दो, सुला देना है यहां, क्योंकि फेंटिंग अटैक की होता है ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा हो जाने की वजह से, इसको हमने लिटा दिया। और पैर को ऊपर कर दिया ताकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिले, ठीक है, इस तरह से। मच बेटर, अभी उसको ठीक लग रहा है। बहुत बार ऐसा होता है वो बेहोश सा हो जाएगा, थोड़ा सा आप पानी मुंह पर डाल सकते हैं, पर उसको लिटा देना है, जहां नहीं है उसको लिटा देना है। अगर कुछ भी नहीं है ऐसे ऊपर रखने के लिए तो क्या करेंगे, अपने कंधों पर कुछ भी नहीं है तो कंधों पर ले लेना उसके दोनों पैर थोड़े समय के लिए। यहाँ पे दिखाया है वीडियो, ये जैसे ये है तो यहाँ पे प्लेस द विक्टिम इन सॉफ्ट पोजीशन, उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल कर दो। यहाँ पे देखो तकिया लगा दिए, कुछ भी नहीं है तो कंधों पर ले लिए दोनों पैर। यहाँ पे अगर कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं और हमको चक्कर आ रहा है तो क्या करेंगे, ये पोजीशन, नीचे झुक जाना है,
जहाँ बैठे हैं वहां पर नीचे झुक जाना है तो ऑटोमेटिक इधर थोड़ा ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई सहारा देने के लिए, मदद के लिए नहीं, तब ये करना है, ये लास्ट है अल्टीमेट, ठीक है। अगर कोई है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो ये था जब चक्कर आए तो, ठीक है। इसमें भी वही सारी चीज़ें, उसको कंफर्टेबल कर दो, उसको थोड़ा एश्योर कर दो, खिड़कियाँ खोल दो, फैन चालू कर दो, कपड़े थोड़े लूज कर दो, और एम्बुलेंस के लिए अरेंज करो। हमको अगर ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ कंडीशन है, ये सब करने के बाद में भी ठीक नहीं हुआ, और फिर आपके पास बीपी इंस्ट्रूमेंट है तो बीपी देखो, आपको पता चलेगा इसका बीपी तो लो हो गया, फिर उसको पीने के लिए कुछ दो, पानी दो, कुछ दो सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह से, ठीक है। फिर आगे इलेक्ट्रिक शॉक, शॉक लगते के बाद क्या करना है? शॉक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले कोई है? इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कोई नहीं, कोई नहीं, शॉक देने वाले इसमें दो प्रकार है, एक तो कम वोल्टेज का शॉक, एक है ज्यादा वोल्टेज का शॉक। जब ज्यादा वोल्टेज का शॉक है तो हम चिपक जाते हैं, और कम वोल्टेज का शॉक है तो हम दूर फेंके जाते हैं, ठीक है। दो बातें इसमें, थोड़ा सा शॉक लगा तो फट से हम हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं, और बहुत ज्यादा वोल्टेज का शॉक है तो हम वहीं चिपक जाएंगे। अब हमको उसकी मदद करनी है, संजय भाई तो क्या करेंगे, उसको खींचेंगे पकड़ के इसमें हमको उसको खींचना नहीं है, नहीं तो हमको शॉक लग जाएगा, खुद भी चिपक जाएंगे। तो अगर किसी को शॉक लग जाता है और या वुडन स्टिक, वी विल सी दैट। तो इसमें क्या करना है, अगर छोटा सा, सबसे पहले तो गीली जमीन है या कुछ पानी है उस पे खड़े रह के इलेक्ट्रिक जो है सर्किट उसको हाथ नहीं लगाना, पहले तो प्रिकॉशंस है। गीले हाथों से प्लग वगैरह ऑन ऑफ नहीं करना है, उसमें शॉक लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम थोड़ा सा पहले वीडियो देखेंगे।
The electric shock. We use a number of electric gadgets in our houses. While using them, we may get a shock or because something happened.
इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्विच ऑफ करना पड़ेगा, जो मेन स्विच है उसको ऑन करो, ऑफ करो। लूज स्विचेस है उससे भी शॉक लग सकता है।
If the force of electric current is less, it will push the body away.
कम करंट है तो बॉडी को फेंक दी जाएगी, ज्यादा है तो चिपक जाएगी।
All the appliances used. First aid for an electric shock. If any person receives the shock, the main switch of the power supply must
be switched off. Next.
If the victim gets attached to the wire or the appliance, do not touch him. But he must be separated from the electricity using a dry stick. If you find
लकड़ी से, लकड़ी नहीं है तो और फिर वो ही बेहोश है, सब कुछ वो सब में सेम प्रोसीजर है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दो उसको, कृत्रिम श्वसन। ओपन एयर, खिड़कियां खोल दो, डॉक्टर के पास ले जाओ।
Let us be away from any kind of electric shock. Do not operate electric appliances with wet hands. You must not operate switches with wet fingers. You must wear your footwear.
जो लोग इसमें काम करते हैं उन्होंने इस तरह के जो शूज है उसको पहनना चाहिए।
Use a new wire.
टेस्टर रहता है वो, उसको यूज करना चाहिए।
Old pieces of wires. We must not touch hands.
खुले वायर्स नहीं रखने इस तरह से, जिससे शॉक लग सके। ये इलेक्ट्रिक वायर है उसमें कपड़े टंग के रखे ऐसे नहीं करना है, हाथों से नहीं करना है उसको, कुछ भी काम करना है तो पहले स्विच ऑफ करो फिर उसके बाद में काम करो।
We must be very careful while using an electric iron.
So,
लकड़ी से हम उसको ये कर सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं है तो शूज से भी कर सकते हैं, जूता निकाल के जोर से उसको बाहर ही करना है, ठीक है। तो इस तरह का ये इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में। अब इलेक्ट्रिक शॉक से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक अगर बहुत ज्यादा रहा, एक तो चिपक जाता है आदमी और वहीं पर डेथ हो सकती है, बहुत ज्यादा वोल्टेज रहा था। दूसरा उसमें हार्ट में अरिथमिया हो सकते हैं, हार्ट रेट जो है 60 to 100 नॉर्मल जो रहता है हमारा, हमारा जो पल्स वो बहुत ज्यादा 200-300 तक चला जा सकता है, फिर उसमें शॉक करना पड़ सकता है, अरिथमिया जिसको कहते हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है उसके वजह से। कभी कभी इंजुरी हो जाती है, जल जाता है हाथ, वो भी हो सकता है, ठीक है। उसके लिए बाकी का जलने का जो फर्स्ट है आगे देखेंगे, उसके बाद में पॉइजन, इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, स्ट्रोक इसको भी थोड़ा बाद में देखेंगे। ये डॉग बाइट के बारे में, कुत्ता काटने के बाद क्या करें इसको लेंगे, फिर मैं डॉक्टर ज्योति का पिछले बार का थोड़ा जो फ्रैक्चर का मैनेजमेंट है वो थोड़ा कुछ बताएंगे। वो डॉग बाइट बहुत सारी स्लाइड्स है, मे बी हम नेक्स्ट मंथ लेंगे जो बचा हुआ है वो। अभी कुत्ता काटने के बाद क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो हमको थोड़ा क्यों ये इंपॉर्टेंट है डॉग बाइट, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी एक सेपरेट ओपीडी चलती है, क्यों क्यों इतना इसका इतना महत्व है, बाकी इसका कोई ओपीडी नहीं है, जैसे हमारा मेडिसिन ओपीडी है, सर्जरी ओपीडी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया उसमें एक सेपरेट ओपीडी है, कुत्ते ने काटा उसकी सेपरेट ओपीडी, एक सेपरेट डिपार्टमेंट है उसका, क्योंकि एक बीमारी है जिसका नाम है रेबीज। सुना है ये बीमारी किसी ने, रेबीज, रेबीज एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इसका कोई इलाज नहीं, अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो वो जिंदा नहीं रह सकता, एक डेड एंड इन्फेक्शन जिसको कहा जाता है, रेबीज इज एन डेड एंड इन्फेक्शन, वंस यू गेट इट देयर इज नो क्यूर, डेथ इज सर्टन। आज तक दुनिया में जितने भी लोगों को हुई है कोई भी नहीं बचा है उस बीमारी से। अब ये जो बीमारी है एक वायरस की वजह से होती है, और ये जो वायरस है जानवरों से आता है, और सबसे ज्यादा जानवरों में जो है वो है कुत्ता, 98% जो रेबीज होता है वो कुत्तों की वजह से होता है, बाकी भालू की वजह से भी हो सकता है, बाकी बहुत सारे प्राणी है, जंगली प्राणी, मंकी, बंदर की वजह से भी हो सकता है। इसके लिए मंकी वो जो हम इंजेक्शन देते हैं ना कुत्ते काटने में, वो क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है एक बार हो गई तो हम जिंदा नहीं रह सकते। अब ये बीमारी क्या है, ये डायरेक्ट ब्रेन को असर करती है, इसके लिए कुत्ता कहाँ काटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ब्रेन के नजदीक काटता है वो ज्यादा डेंजरस है, पैर को काटा वो इतना डेंजरस नहीं है, पर यहाँ अगर किसी को काटा तो वो ज्यादा डेंजरस है। अभी कौन सा कुत्ता, हर कुत्ता नहीं, जो कुत्ता पागल है, पागल कुत्ते को कैसे पहचानें, वो कईयों को काटता है, उसकी लार लार होती है ना वो गिरते रहती है, वो देखेंगे हम 2-3 मैं चित्र दिखाऊंगा उसके, और वो जो कुत्ता है वो 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, जिसको ये बीमारी है रेबीज की, रेबीज की जिस कुत्ते को बीमारी है वो 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। इसके लिए जब भी कुत्ता काटता है अगर हो सके तो हमको ये देखना है कि वो पालतू है या स्ट्रे डॉग है, रस्ते का कुत्ता है, हम जिसके ऊपर ध्यान नहीं रख सकते। अगर हम ध्यान रख सकते हैं, हमको पता है हमारे बाजू का ही कुत्ता है और उसको टीके भी लग चुके हैं तो कुछ डरने की बात नहीं, पर वो स्ट्रे डॉग है, पता नहीं कहाँ काटा नकी के पास और अभी पता ही नहीं कहाँ चला गया, उसके बारे में हमको कोई खबर नहीं है, तो वो ज्यादा डेंजरस है। पर यदि हम 10 दिन तक उसकी तरफ ध्यान रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस कुत्ते को रेबीज होता है वो 10 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, वो भी मर जाता है, खुद कईयों को काटता है और खुद भी मर जाता है, और जिसको जिसको काटेगा उसको ये बीमारी होगी रेबीज। हम थोड़ा आगे देखेंगे, तो इसमें काटने के बाद क्या करना है, जैसे यहाँ काटा, अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीजें है कि कैसे काटता है, कपड़े के ऊपर से काटा कि डायरेक्ट काटा, कहाँ काटा, ब्रेन के कितने नजदीक काटा, यहाँ काटा, यहाँ काटा, पैर के पास काटा, कहाँ काटा, कैसा बाइट था, आपने कुछ छेड़छाड़ की उसके बाद काटा कि खुद ही आके काटा, वो भी एक देखने वाली बात है। जो तो जो पागल होता है वो अपने आप काटेगा, पर जो आप उसको कुछ कुछ कर रहे हो तब वो आके काटता है तो वो दूसरी बात हो जाती है, वो थोड़ा कम खतरनाक है, क्योंकि आपके आपने उसको कुछ कुछ किया, छेड़छाड़ की, उसके बाद में वो काटा। जो रेबीज रेबिट डॉग होता है वो अपने आप काटता है, ठीक है। तो जहां पे भी काटा, जैसे कि सबसे मेन क्या करना है, अगर हमको कुत्ते ने काटा पैर में काटा, तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर के पास जाने से पहले 10 से 15 से 20 मिनट तक नल खोल देना है और पैर रख देना है जहां पे काटा, 10 से 15 मिनट तक पानी से वो उसके जो उसका जो लार होती है उसमें वो वायरस होता है, अगर होगा भी हो तो निकल जाएगा, और साबुन से धोना है, कोई डिटर्जेंट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, पानी और साबुन 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यूस नॉन स्टॉप, नल खोल देना है पैर रख देना है और जहां जहां कहीं काटा हो, ठीक है। तो ये उसका फर्स्ट एड, अगर वहां से खून निकल रहा हो तो थोड़ा प्रेशर देना है, जहां से भी खून निकलता है उसका ट्रीटमेंट है कि प्रेशर देते रहना, ये तो एक दूसरा ट्रीटमेंट है। थोड़ा सा भी हमको शेविंग कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं ब्लीडिंग हो रहा है, दबा के रखना है किसी से भी, हाथ से दबा के रखो, कपड़े से दबा के रखो, किसी से भी, वो ब्लीडिंग का तो एक ही ट्रीटमेंट है कि दबा के रखना 15 मिनट तक नॉनस्टॉप दबा के रखना, पहले वॉश करना है उसके बाद। उसके बहुत सारे 3 ग्रेडिंग होते हैं, एक ग्रेड है जो कुत्ते ने केवल चाटा लीकिंग किया, काटा नहीं, दूसरा है काटा और थोड़ा सा खून निकला, तीसरा है इतना काटा कि पूरा मांस के मांस बाहर हड्डी दिख रही है, मतलब इस तरह से, वो है ग्रेड 3, दैट इज वेरी डेंजरस। आगे देखेंगे, रेबीज इंडिया के सबसे ज्यादा इंडिया में इसकी डेथ है, इसे देखा गया है 96% सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, भारत में लगभग कितने 25 मिलियन स्ट्रीट डॉग्स, ये संख्या है कुत्तों की अभी किसने किने बतानी सब जगह ये होता है रेबीज बीमारी, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप छोड़कर, ये जो स्टेटिस्टिक्स जो निकाला गया है। फिर उसके बाद में मेन वेक्टर डॉग है, 99% जो होता है वो कुत्तों की वजह से हो सकता है, पर किसी की वजह से, जैसे भालू शेर जितने वाइल्ड एनिमल है वो सब की वजह से हो सकता है, भालू ये सब, इसके लिए भालू काटते हैं उसको भी हम देते हैं। हाउ टू ट्रीट,
हाउ टू ट्रीट अ कैट और डॉग बाइट, द बाइट्स ऑफ डॉग्स एंड कैट्स कैन लीड टू इन्फेक्शन एंड एंटीबायोटिक,
और इसमें एक होता है कि बहुत बड़ा अगर खा रहे उसको टाके नहीं देने होते, लूज टाके देने होते अगर जरूरत भी पड़ी तो, ये ऐसा तो नहीं पानी डायरेक्ट नल खोलना है, ऐसे दिखा रहा है उनको कैसे करना है, और दूसरा जहाँ काटा वो पैर थोड़ा सा ऊपर रख देना है, ठीक है, अगर सूजन कुछ है तो वो काम हो जाएगी। ट्रीटमेंट जैसे मैंने बताया 3 कैटेगरीज है इसमें, एक तो टच किया है खाली वो फर्स्ट कैटेगरी आता है, थोड़ा सा काटा है सेकंड कैटेगरी आता है, थर्ड कैटेगरी ज्यादा काटा है उसमें क्या क्या करना है शॉर्ट में मैं बताऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट एड लोकल ट्रीटमेंट, अगर सेकंड स्टेप है कुछ बीटाडीन वगैरह वहाँ लगा लेना है, थर्ड स्टेप है वो वैक्सीन लेना है। अब ये जो वैक्सीन है इसके पहले तो 14 इंजेक्शन होते थे, आपने सुना होगा कभी, वो भी पेट में, अभी 14 नहीं है, अभी खाली 5 है, पर 5 लेते समय अगर बीच में पता चल गया ये कुत्ता ठीक है, रैबिड नहीं है, पागल नहीं है, तो उस समय बंद कर देते इंजेक्शन, ठीक है। तो पहला इंजेक्शन जिस दिन काटा, फिर तीसरे दिन में, सातवें दिन में, 14वें दिन में, 28वें दिन में 5 इंजेक्शन, अगर वो कुत्ता सही में उसको मतलब ये है रैबिड है वो पता नहीं उसके बारे में कुछ, और यहाँ पता चल गया हमको कि वो जिंदा है अभी तक, तो यहाँ बंद कर देना है, यहाँ पूरे लेने की जरूरत नहीं, यूजुअली फिर 3 लगते हैं, और ये छोटा सा इंजेक्शन होता है 0.1 या 0.5 ml का, और इधर लगता है हाथ में, पहले पेट में लगते थे वो भी 14, अभी ये नहीं है, और वो जो कुत्ता है उसकी तरफ 10 दिन तक ध्यान रखना है। अगर हाँ वो बूस्टर डोज देना होता है उसके बाद अगर ये है तो। फिर अभी जो कुत्ता पागल है उसको क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले अचानक से वो कुत्ता एग्रेसिव हो जाएगा, सबको काटने लगेगा, एकदम वॉयलेंट हो जाएगा, भौंकने लगेगा जोर जोर से, ये उसकी आवाज बदलती है। उसके बाद में रनिंग एमलेसली इधर से उधर भागता है वो, और किसी को भी विदाउट एनी प्रोवोकेशन, उसको कुछ छेड़छाड़ नहीं किया उसके बावजूद भी वो काटने लगता है, वो है पागल कुत्ते की निशानी। फिर वो खाना पीना छोड़ देता है, कुछ भी खाता है, पेपर सैंड गुड जो दिखा वो, ये पागल कुत्ते की निशानी है, सलाइवेशन होते रहता है उसको, इस तरह से लार गिरते रहती है, ये सब पागल कुत्ते की निशानी है। और सुन हो जाता है, खाता नहीं पीता नहीं, जैसे ड्राउजी हो जाता है एकदम, विड्रॉस और उसके बाद में उसकी मृत्यु। तो ये जो पागल कुत्ता है उसका सब कुछ, ठीक है। तो जो लोग भी कुत्ते या सब पालते हैं उनके लिए है कि भाई जो भी कुत्ता है उसको वैक्सीनेट करके रखें। अगर ऐसा कुत्ता है कि जिसको वैक्सीनेशन दिया हुआ है तो फिर ज़्यादा खतरे वाली बात नहीं, फिर भी हमको उसकी तरफ 10 दिन ध्यान रखना है। और हमको अगर ऐसा है किसी ने काटा और हम ध्यान नहीं रख सकते तो फिर तो पूरे 5 इंजेक्शन लेनी है, क्योंकि पता नहीं अभी वो कुत्ता कहाँ चला गया, उसकी तरफ कहाँ से ध्यान रखें। हाँ, किसके इंजेक्शन की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एकदम सेफ, मैक्सिमम इट इज वेरी 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 सेफ इंजेक्शन। 3 इंजेक्शन से यूजुअली हो जाता है काम, पर अदरवाइज फिर ज्यादा इंजेक्शन लेने पड़ते हैं अगर हमको पता ही नहीं उसके बारे में। और ये तो कुत्ते के बारे में, पर यदि भालू है तो पूरे इंजेक्शन लेने पड़ते, मंदर है उसके पूरे इंजेक्शन लेने पड़ते, क्योंकि ये जो बीमारी हम देख इसलिए रहे इंजेक्शन रेबीज बीमारी के लिए, तो बंदर से भी हो सकती है, भालू से भी हो सकती है, किसी भी, ये जो वाइल्ड एनिमल है शेर ये वो, उनका तो लेना ही, उसकी तरफ कौन ध्यान रखेगा, कौन सा बंदर था। शेर तो छोड़ेगा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि वाइल्ड एनिमल जितने हैं उनकी तरफ उनका तो कुछ हम ध्यान ही नहीं रख सकते, उनका तो लेना ही लेना है इंजेक्शन। नहीं, सेम इंजेक्शन सबके लिए, सेम इंजेक्शन है रेबीज का, और अभी तो बहुत जो राइबिक्लोर इंजेक्शन जो विरोराब इंजेक्शन है, तो दैट इज वेरी सेम। ये कुत्ते को इंजेक्शन दे रहे वैक्सीनेशन, उसको भी टीके लगते हैं। फिर इसके बाद में स्नेक बाइट है, हम अगली बार देखेंगे कभी। सांप, ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है, सांप सर्पदंश, अलग अलग प्रकार के सांप क्या क्या कर रहे हैं। तो अभी मैं डॉक्टर ज्योति का जो पिछली बार ट्रांसपोर्ट कैसे करना है इसके बारे में।
एक 10 मिनट में कहाँ से बताइए।
इसी के आसपास में
ये
इससे थोड़ा ऊपर
ये
इससे ऊपर ये
ओम शांति। थैंक यू डॉक्टर सचिन, आप सभी को मजा आया होगा। प्राथमिक उपचार ऐसी एक चीज है जहां तक मैंने समझा है ये निरंतर करते भी रहना चाहिए, इसमें थोड़ी साइंस भी है, आर्ट भी है, काफ़ी कुछ है। और अगर आपको रुचि बना रहा तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ को आगे भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो अभी जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया कि जो भी मरीज हैं प्राथमिक उपचार देने के बाद अल्टीमेटली उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, तो हाउ टू ट्रांसपोर्ट, अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसमें भी अगर चोटिल व्यक्ति है तो उनको हम कैसे अस्पताल तक पहुंचाएं। अभी कोई मरीज है, चोटिल व्यक्ति है, उसको जैसे जैसे हम किसी भी वाहन में लेके नहीं जा सकते हैं। यहाँ देखिए कि लोग भी है, सामान भी है, सब है, चढ़ा दिया, और हम कोई भी मरीज को ऐसे नहीं चढ़ा सकते हैं। या ऐसा भी नहीं है कि भारतवर्ष पूरे विश्व में द्वितीय स्थान लेता है आबादी के लिए, तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो कहीं भी जगह नहीं मिली तो आप किसी भी ट्रेन में कहीं भी चढ़ा दो, ऐसा तो नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि ऊंट है, इतनी बड़ी ऊंट और एक छोटी सी व्हीकल में चढ़ा दिया, और एक भी नहीं दो दो चढ़ा दिया, तो जो बीमार व्यक्ति है उसको हम किसी भी वाहन में जैसे तैसे चढ़ा के हॉस्पिटल भेजें, ये नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी पर्सन को आप उठा के लेके जा रहे हो, ऐसे कोई भी बीमार व्यक्ति को हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी जान कीमती है। या ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई भी वाहन नहीं मिल रहा है और बीमार व्यक्ति है और आपने रिक्शा में जैसे तैसे डाल के उसको लेके जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि राम नाम सत्य है, मरीज मेरा मस्त है, ऐसा भी नहीं, केवल दो ही व्यक्ति उठा के ले जाने की प्रयत्न न करें। या ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल पैनिक हो गए, घबरा गए और जैसे तैसे कहीं से स्ट्रेचर जैसे चीज पकड़ा, लेकिन कहीं हाथ लटक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है और आप भागे भागे जा रहे हैं सपा खाना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आइडियली तो इन मरीजों को एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन उसमें भी कई सारे चीजें हैं। एक्चुअली ये एक टीम वर्क है, एक दूसरे की सहायता से हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ी चैलेंजेस भी है। जैसे देखिए, सारे हाथ हाथ जब मिलता है तब जाके कुछ बनता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, जो ग्रुप डांस करते हैं ना, समूह नृत्य जो करते हैं, वो बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि मानो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं 8-10 लोग हैं, तो उसमें जैसे कोई अगर ऐसा करे तो सारे लोग ऐसे ही करेंगे, फिर ऐसा तो ऐसे ही करेंगे। लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में वो नहीं है, माना डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है। मैं जो चीज करूंगा मेरे साथ वाले सहयोगी दूसरा चीज करेंगे, वही चीज नहीं करेंगे। तो ये बहुत जानकारी की जरूरत है इसमें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी प्राथमिक उपचार में ये दिखाया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति चोट लग गया हाथ या पांव कहीं, तो दो लोग मिलकर ऐसे ले जा सकते, लेकिन अगर उस व्यक्ति को स्पाइनल इंजरी यानी कि रीढ़ की हड्डी में चोट होने की संभावना है, तो ये साजिश नहीं किया जाता। अगर ऐसे ले जाएंगे तो मरीज को बहुत नुकसान हो सकता है। जैसे ये ह्यूमन क्रच बन के जो लेके जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हमारी जो ये रीढ़ की हड्डियां हैं, ये बहुत नाजुक है और इसके अलग अलग अपने कर्वेचर्स हैं, और इस रीढ़ के हड्डी के बीच में स्पाइनल कॉर्ड और सारा नर्व्स रन करता है, और चोट के वजह से उसको कहीं फ्रैक्चर आया, लेकिन वो हड्डी पूरा नहीं टूटा था, लेकिन हमारे शिफ्ट करने के वजह से, हमारे ट्रांसपोर्ट करने वजह से अगर उसकी पूरी वर्टीब्रा खराब हो जाती है या स्पाइनल कॉर्ड कट जाता है, और उसके वजह से वो व्यक्ति अपंग हो जाता है सारे जीवन के लिए, पैरालिसिस हो जाता है, तो गुनाहगार कौन? हम, जिसने लेके गया। इसलिए बहुत ध्यान देना है। जैसे देख लीजिए, ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ फ्रैक्चर हुआ, अंदर में वर्टीब्रा है, फ्रैक्चर हुआ, स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ। अगर हम बहुत सावधानी पूर्वक ऐसे मरीज को शिफ्ट करेंगे तो शायद हम बहुत बड़ी एक होने वाले चीज से बचा सकते हैं, खतरे से बचा सकते हैं, लेकिन जैसे तैसे किया तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो बेसिकली अगर किसी को सस्पेक्टेड है स्पाइनल इंजरी का, तो उस पेशेंट को सुपाइन यानी कि सीधा लेटा के जाना चाहिए, उल्टा या ऐसा तिरछा नहीं। फिर उसको ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, उसके गर्दन और नेक को सपोर्ट देना है, और उसको स्पाइन बोर्ड में ले जाना चाहिए। स्पाइन बोर्ड का मतलब ऐसा बोर्ड होता है जिसको स्पाइन बोर्ड कहते हैं। तो ऐसे में उसको फिक्स करना है पहले, और ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, कई लोग मिलके इसको करना होता है, इसके लिए प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे देखिए, एक इंस्ट्रक्टर होता है, एक टीम लीडर होता है, और ऐसे चोटिल व्यक्ति को स्पाइन बोर्ड में लेटाने के लिए सर्वाइकल कॉलर यानी कि गर्दन में एक सपोर्ट दिया जाता है, फिर 4-5 लोग मिलके इसको इकट्ठे बोर्ड के अंदर में डाला जाता है, फिक्स किया जाता है, फिर उसको लिफ्ट किया जाता है, लाइक ए लॉग। आप सभी ने देखा होगा बड़े बड़े जो लॉग होता है पेड़, जिसे लकड़ी बनती है, उसको कैसे उठाते हैं ट्रक में, आप सभी ने नोट किया होगा। सारे लोग मिलके ऐसे 1-2-3 करके करते हैं, ऐसे करना चाहिए। फिर ऐसा सर्वाइकल कॉलर देना है, फिर ऐसा फिक्स कर देना है, और ये उस बोर्ड के साथ में आता है, वेलक्रो वाला आता है, पेशेंट की जैसे जैसे मोटापा है या दुबला है उस हिसाब से हम इसको फिक्स कर सकते हैं, फिर हम इसको एम्बुलेंस या किसी वाहन में डालें और अस्पताल ले जाएं। टाइम भी हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये हमारी सिलसिला जारी रहे, अगर आप सभी की इंटरेस्ट बना रहे तो, और हम तो हमारे तरफ से आपके बीच में आने के लिए आतुर हैं, और हमें खुशी है कि बाप दादा भी अभी पधारने वाले हैं इसी 24 को, तो बाप दादा की मिलन के बाद जैसे आप लोग बोलेंगे हम इस चीज को आगे भी कंटिन्यू करना चाहेंगे। ओम शांति। थैंक यू।
नहीं
बढ़िया है
आपके पास 2010 है ऑफिस ये चले जाने 2010 में चलेगा खाली चाहिए प्रेजेंटेशन
अच्छा प्रेजेंटेशन
एक कुछ है हेल्थ रिलेटेड
इसमें
और भी रखे बाद में ऑपोपिट में आ जाएगी